ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम ज्ञानतिमिरान्धश ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपां सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। रक्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अलवर कथा में आप सबका स्वागत है। किसी का मोबाइल आवाज कर रहा है तो तीन अलवर कितने हो गए हमारे अलवर? नाम बताइए। पेय अलवर। तो अभी चौथे अलवर है तिरुमलिशाही अलवर। तिरुमलिशाही अलवर ये भी उसी समय के अलवर हैं जब ये तीनों की उपस्थिति थी और उसी प्रांत में इनका जन्म हुआ था। और लगभग ये अलवर 700 साल इस जगत में थे। कितने साल? बहुत लंबी आयु थी उनको। जैसे कई बार बिल मंगल ठाकुर के बारे में भी कहा जाता है, बिल मंगल ठाकुर भी 700 साल जीवित रहे और वो रोज त्रिवेंद्रम में जो अनंत पद्मनाभ है उनकी परिक्रमा किया करते थे और इतने बड़े थे, लंबे चौड़े थे अनंत पद्मनाभ। तो फिर बहुत भगवान को कहा कि आप थोड़े छोटे हो जाओ ना, बड़ा परिक्रमा करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। मतलब कई किलोमीटर थे, भगवान छोटे हो गए, फिर उनके लिए सरल हो गया। तो वैसे ही ये तिरुमलिशाही अलवर काफी समय रहे और ये सुदर्शन चक्र की क्या है, अवतार है। तो मद्रास के पास एक स्थान है प्राचीन स्थान है वहां। तो एक बार द्वापर युग में सारे ऋषि एकत्रित होते हैं और वो पूछते हैं कि कौन सा स्थान बेस्ट है जहां हम श्री हरि की सेवा कर सकते हैं या तपस्या कर सकते हैं, पवित्र स्थान। तो भगवान स्वयं ही उनको बताते हैं कि मलिशाही नाम का जो चेन्नई के पास स्थान है वो सबसे बेस्ट है तपस्या आदि करने के लिए। और उसका प्राचीन नाम था महिसार, उस स्थान का प्राचीन नाम, जहां विदेह वंश के राजा लोग तपस्या करने हेतु वहां आते थे। तो उस स्थान में सारे ऋषि मुनि आते हैं, तपस्या करते हैं और उनकी जो तपस्या है वो एक प्रकार से फोकस थी सुदर्शन के ऊपर। तो उनमें से एक जो ऋषि थे जिनका नाम था भृगु, वैसे ब्रह्मांड पुराण में वर्णन आता है कि ये भृगु भार्गव वशिष्ठ ये सब लोग आए थे यहाँ तपस्या करने हेतु, और उन्होंने ब्रह्मा को पूछा था कि कौन सा ऐसा श्रेष्ठ स्थान है, दूसरा एक वर्जन है इस कथा का, कि कौन सा ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ जाने से हमारे कार्य में कोई बाधा नहीं आ सकती, कंटिन्यूअसली हम तपस्या कर सकते हैं। तो ब्रह्मा ने उनको कहा था कि एक तराजू में एक और पूरा पृथ्वी रखो और दूसरे ओर क्या रखो, ये जो प्लेस है महिसार, जो प्राचीन प्लेस है। तो उन्होंने कहा पृथ्वी में ये श्रेष्ठ स्थान है महिसार। हाँ, तो फिर ये लोग आकर उस स्थान में तपस्या करते हैं, और तपस्या करते हुए इनमें से जो भार्गव ऋषि हैं, कहा जाता है कि उनकी पत्नी थी कनकांग, कनकांगी या कनकांग, या दूसरे इसमें वर्णन आया है कि वो एक अप्सरा थी, और ये भार्गव ऋषि अप्सरा से मोहित हो जाते हैं और एक पुत्र को जन्म देती है वो अप्सरा गर्भवती होकर। 12 महीने वो बालक उनके गर्भ में था, और जब जन्म दिया तो केवल मांस का टुकड़ा, मांस का एक टुकड़ा है, मांस का एक पिंड है, तो उसने, मांस के पिंड ने जन्म लिया था एक प्रकार से। तो ये जो भार्गव ऋषि और जो कनकांग अप्सराएं हैं, ये बहुत निराश हो गए, और उन्होंने उस जैसे इसके साथ हुआ था, कौरवों की माता कौन है, गांधारी, उन्होंने भी मांस का पिंड को ही जन्म दिया था। तो फिर बाद में वेदव्यास जी आकर उनको अलग अलग वो करते हैं, भागों में काट कर उनको रखते हैं, और उससे फिर कौरवास का जन्म होता है। तो वैसे ये मांस के पिंड को वहां जंगल में बांस का जो लकड़ियां थी उनके पास उनको छोड़ते हैं, अरे लोग चले जाते हैं। तो उस प्रकार से उसकी रक्षा पृथ्वी देवी करने लगी, और भगवान आकृष्ट हो गए उस मांस का जो पिंड था, उन्होंने जो जन्म दिया था कनकांगी ने, तो अपना दृष्टि लक्ष्मी की ओर डालते। भगवान, लक्ष्मी समझ जाते कि भगवान के मन में क्या है। इसलिए कहते ना, परफेक्ट पत्नी कौन है, जो पति के मन की बातों को जान ले। तो वैसे लक्ष्मी देवी ने जान लिया कि भगवान क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं। तो फिर भगवान के साथ लक्ष्मी देवी सोचने लगी कि भगवान चाहते हैं विष्णु किस बालक के ऊपर कृपा करें। तो ऐसे भगवान लक्ष्मी देवी के साथ उस स्थान में आते हैं, और देखते हैं कि उसको ना हाथ है, ना पैर है, ना कुछ है, एक मांस का पिंड है। तो लक्ष्मी ने जैसे अपनी दृष्टि उसके ऊपर डाली, तो तुरंत ही उस बालक में सब प्रकार के जो अंग है, लिम्स, वो प्रकट होने लगे। हाथ, पांव, आईज, कान, ये सारे चीजें प्रकट होने लगी, और प्रकट होते ही ये बालक जोर से रोने लगा, जोर से आवाज करने लगा। तो भगवान ने तुरंत उस बालक को अपने हाथ में उठाया, और उठाकर भगवान ने उसको ब्लेसिंग दी कि आपकी आयु चिरंजीवी भव, लंबी आयु होगी आपकी। और फिर लक्ष्मी देवी ने उनका जो अंगूठा था, अंगूठे में ऐसा सामर्थ्य या शक्ति दी कि जिसके द्वारा उस अंगूठे, यदि उस बालक को भूख लगती थी तो उसको केवल क्या करना होता था, अंगूठा चूसना होता था। ये ऐसा बालक था कि जिसको ना भूख प्यास से, भूख प्यास आदि नहीं लगती थी। तो वो जो रोने लगा तो वो कोई भूख प्यास से रो नहीं रहा था, बल्कि भगवान को निरंतर देखना चाहता था। और फिर भगवान के विरह में वो निरंतर रोने लगते थे। तो आगे चलकर वो बालक को फिर भगवान और लक्ष्मी देवी ने उधर ही रखा, जब अभी उसके सारे शरीर अंग आदि डेवलप हो गए थे। तो उस समय एक जो डिवोटी है जिनका नाम था तिरुवलन, क्या नाम था, तिरुवलन, और वो लकड़ियां तोड़ने के लिए आया करते थे जंगल में, और लकड़ियां तोड़ तोड़ा करते थे, तो उनको ये बालक दिखाई दिया तिरुवलन को। तो उनका अपना ये जो जीवन यापन होता था इन लकड़ियों से, तो झाड़ियों के बीच में इस बालक को देखा जो बहुत ही सुंदर था, और उस बालक को वो ले गए, क्योंकि ये जो तिरुवलन थे और उनकी जो पत्नी थी पंकज चल्लवी, हाँ, उनको कोई संतान नहीं थी, तो वो ले गए अपनी पत्नी को देते हैं, और वो दोनों पूर्ण रूपेण वात्सल्य भाव से उस बालक की सेवा करने लगते हैं। लेकिन एक अद्भुत बालक था, ये ना खाता था ना पीता था ना शौच में जाता था, और वो बड़ा हो रहा था, बहुत शक्ति संपन्न था। तो ऐसे बच्चे हो तो कितना अच्छा है, हाँ, जीरो मेंटेनेंस है ना, मेंटेनेंस फ्री। हम सब चाहते हैं, कुछ चीजें चाहते हैं जो मेंटेनेंस फ्री हो, तो बच्चे इतना उनके पीछे खर्च करना पड़ता है। यहाँ तो इनको संतान मिले भी कैसे, जो नहीं खाती नहीं पीती और ना शौच में जाती है, तो बिना आहार के बड़ा हो रहा था। फिर उस गांव में और एक पति पत्नी थे, उनकी आयु भी काफी हो गई थी, उनको भी कोई संतान नहीं थी। और फिर उनको किसी ने कहा कि इस बालक को दूध पिलाकर उसका महादूध आप पियोगे, महा महा मिल्क, क्या कहेंगे उसको, महाप्रसाद मिल्क, तो आपको संतान प्राप्त होगी। तो इन दोनों ने जाकर वैसे ही किया। तो ये जो महान बालक का जो महाप्रसाद दूध इन्होंने पिया, तो इनको एक संतान प्राप्त हुई, जिसका नाम हुआ कन्नी कन्नन। क्या नाम हुआ? हाँ, ये महान भक्त बने कन्नी कन्नन। हाँ, तो ये जो अलवर हुए थे तिरुमले शाही अलवर, इनका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि उस प्लेस का नाम था, पुराना नाम था महिसार, लेकिन उस समय नाम था तिरुमल शाही, जिस स्थान में इनका जन्म हुआ, जिसके कारण इनको तिरुमले शाही अलवर कहा गया। लेकिन ये दूसरा जो पति पत्नी थे, उन्होंने जो दूध पिया और उनको संतान प्राप्त हुई, वो भी अमेजिंग भक्त बने, कन्नी कन्नन जैसे उनका नाम था। और आगे चलकर जब ये कन्नी कन्नन बड़ा हो गया, तो ये तिरुमले शाही अलवर का सबसे करीब शिष्य बना, सबसे महान। और ये जो तिरुमल शाही जब बड़े हो गए 7 साल की आयु में, बड़े होते गए, फिर इन्होंने ट्रैवलिंग करना शुरू किया, सारे देशों में जाने लगे, सारे स्थानों में जाने लगे, षड दर्शन न्याय वैशाषिक वेदांत आदि का अध्ययन करने लगे, बौद्ध जैन फिलोसफी को समझने लगे। और 700 साल बीते, कितने साल, निराश हो गए। निराश होकर उन्होंने सोचा, और वो शिव जी के भक्त बने, और निराश होकर फिर एक दिन एक स्थान में मौन व्रत धारण कर बैठे हुए थे मैलापुर में, और वहां एक अलवर गुजर रहे थे वहां से, जिनका नाम था पेय अलवर। कौन से पेय? जो क्या उनका विशेषता क्या थी, वो कृष्ण प्रेम को पीकर हमेशा मदनमत्त रहा करते थे, इसलिए उनको क्या कहते, पेय अलवर। तो ऐसे पेय अलवर जा रहे थे, उन्होंने देखा ये तो एक महान योगी है, लेकिन अपना जीवन विफल कर रहा है। तो पेय अलवर को लगा कि सबको कृष्ण प्रेम की मदिरा पीनी चाहिए, सब पागल हो जाने चाहिए कृष्ण के लिए, जैसे प्रभुपाद को लगता है कि हमेशा सारा वर्ल्ड भक्त बने कृष्ण का, तो वैसे पेय अलवर को लगा कि ये इतना मौन व्रत धारण करके बैठा है यहाँ मौनी बाबा, इसको तो भक्त बनना चाहिए कृष्ण का। तो फिर और देखा कि ये तो बात नहीं करता है, तो इन्होंने सोचा कैसे इसको अट्रैक्ट करूं, कैसे इसको बदलूं। तो इन्होंने क्या किया उस स्थान में, वहां वैसे दो स्टोरीज आती हैं कि एक बार ये जो तिरुमल शाही अलवर है, एक बार जा रहे थे और उन्होंने पेय अलवर को देखा। पेय अलवर क्या कर रहे थे, पौधे को उल्टा करा था, क्या किया था पौधे को, तुलसी का पौधा उल्टा किया था ऐसे जड़े ऐसी ऊपर, और एक मटका लिया था उसमें बहुत छेद थे और उससे पानी डालते जा रहे थे। तो ऐसे देखा, उन्होंने कहा ए पागल हो क्या तुम, ऐसे कैसे पानी डालते हो पौधे को उल्टा करके। तो उन्होंने कहा मैं पागल नहीं हूं, कौन पागल है, पेय अलवर ने किसको पागल कहा, तिरुमल शाही, जो अभी शिव जी के भक्त थे, शिवाजी के शिव जी के उपासक थे। और तिरुमल शाह ने कहा, उन्होंने कहा कितना उसका मौन व्रत भी टूटा, देखा कि ये कितना पागल है, ऐसे हंसने लगे बोलकर ना, जिसके कारण फिर ये तिरुमल शाही बहुत प्रभावित हो गए। और उन्होंने कहा क्यों मुझे आप पागल कह रहे हो, तो उन्होंने कहा आप तो पागल हो, आप तो नारायण के पुत्र की भी नहीं बल्कि पौत्र की उपासना कर रहे हो। किसकी उपासना कर रहे थे? शिव जी की। नारायण के पुत्र कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा के पुत्र कौन है? शिव जी। तो जैसे ये सुना और पे अलवर का जो भक्ति का प्रकाश है और उनकी कृष्ण में आसक्ति है, इसको देखते ही ये तिरुमल शाह अलवर शिव जी की उपासना को छोड़ते हैं और इनके चरणों में गिर जाते हैं और महान भक्त बनते हैं। हाँ, तो इसलिए पे अलवर का बहुत, इनका बहुत ऊंचा स्थान है तिरुमल शाह अलवर का, क्योंकि पोईगे अलवर ने परह ज्ञान मतलब उन्नत ज्ञान को स्थापित किया था, परह ज्ञान जिसे कहते हैं। और जो भूतद अलवर है उन्होंने पराभक्ति को स्थापित किया था, और पे अलवर ने परमा भक्ति, उससे भी श्रेष्ठ भक्ति का स्थान। लेकिन तिरुमल शाह अलवर इन तीनों की पूर्णता है, इसलिए तिरुमल शाह अलवर का एक नाम पड़ा, इनका नाम था भक्ति सार। क्या नाम पड़ा? भक्ति सार, की भक्ति के सार को ग्रहण करने में ये बहुत एक्सपर्ट है, भक्ति के सार को उन्होंने अंगीकार किया है अपने जीवन में। तो ऐसे तिरुमल शाह अलवर ने भगवान की बहुत स्तुतियां की, उनके उन्होंने दो ग्रंथ लिखे। और उस समय ऐसे होता था कि ग्रंथ कोई लिखे तो पहले कावेरी के पानी में रख डालते थे, जो ग्रंथ तैरता था समझना चाहिए कि वो ऑथराइज्ड है, जो डूबेगा तो वो अनऑथराइज्ड है, कोई भी बुक नहीं लिख सकता, ऐसे था। तो फिर इन्होंने जैसे ग्रंथ डाले, देखा इनके ग्रंथ ऊपर आ गए। और वो दो ग्रंथ क्या थे? एक ग्रंथ था 96 गीत थे, जिसमें उन्होंने स्थापित किया था भगवान नारायण ही सर्वश्रेष्ठ हैं। उस ग्रंथ का नाम था नान मुघन तिरुवंदादि। क्या नाम था? तिरुवंदादि। और दूसरा था तिरुचंद विरुत्तम, जिसमें 120 कविताएं थी, सॉन्ग्स थे। और इसमें उन्होंने अद्वैत दर्शन का वर्णन किया था, जिसको रामानुजाचार्य ने स्वीकार किया। और ये तीनों मिले और तिरुमल शाही उन तीनों को भी मिले, चारों मिलकर इतना कृष्ण कथा किया करते थे कि कहते सबसे आनंददायी समय था उनका। तो एक बार यहाँ साउथ में तिलक जो हम लगाते उसको तिरुमन कहते हैं। क्या कहते हैं? तिरुमन। तो ऐसे जो तिरुमल शाही है उनको तिलक नहीं मिल रहा था, बल्कि चैतन्य महाप्रभु डांट देते थे। जब किसी का माथा देखते थे सबसे पहले क्या देखते थे? क्या होना चाहिए माथे पर? तिलक। तो चैतन्य महाप्रभु देखते थे, अरे तुम्हारा माथा खाली कैसे है, हाँ जाओ तिलक लगा के आओ। तो जिस माथे पर तिलक नहीं है उस माथे को स्मशान घाट कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, इसलिए ये माथा हमेशा तिलक से सुशोभित होना चाहिए। और भगवान देखते हैं, विष्णु दूतास देखते हैं, और वैसे भी ये शरीर मंदिर है तो उसको हमेशा सजा के रखना चाहिए तिलक के माध्यम से। तो हमें तिलक लगाने में आलसी नहीं होना चाहिए, स्नान करते सबसे पहले किसी चीज की याद होनी चाहिए, हमें याद आनी चाहिए, तो क्या याद आना चाहिए? तिलक। तो तिलक लगाना मीन्स अपने जीवन में किसी नाथ को स्वीकार करना या किसी स्वामी को स्वीकार करना। जैसे विवाह हो जाता है तो स्त्रियां वो लगाते हैं ना सिंदूर, पता नहीं गांव में हम देखते थे बचपन में, वहां महाराष्ट्र में जब शादी के बाद हमेशा लाइफ टाइम के लिए इतना बड़ा सा वो लगाते थे, रेड इज रेड, क्या कहते हैं उसको, बिंदी तो चिपकती है ना हमको, कुमकुम, हाँ प्रॉपरली ऐसे राउंड, तो लगता है कि हाँ ये विवाहित स्त्री है। और लाइफ टाइम के लिए कभी आप माथा किसी स्त्री का खाली नहीं देख सकते, तो मतलब इसका मतलब है उनके जीवन में कौन है? पति है, नाथ है, स्वामी है। उसी प्रकार से हमारे स्वामी कौन है? कृष्ण है। इसलिए हम सनात हैं, अनाथ नहीं है। मैं हमेशा वो स्टोरी सुनाता हूँ जो प्रभुपाद ने सुनाई थी। प्रभुपाद ने जो एक स्टोरी सुनाई तिलक के बारे में कि एक फैक्ट्री था, हिंदू ओनर था उसका, और जब हिंदू ओनर ने वो फैक्ट्री में सारे जितने भी वर्कर्स आते थे वो तिलक लगा कर आते थे। एक दिन वो ओनर ने वो फैक्ट्री सेल किया, एक मुस्लिम व्यक्ति ने उसको खरीदा और देखा कि ये क्या है, सारे लोग तिलक लगा के हैं। उन्होंने कहा कल से कोई व्यक्ति तिलक लगा कर नहीं आएगा, नहीं तो मैं निकाल दूंगा नौकरी से। सब लोग डर गए। एक बहुत पावरफुल था, वो तिलक लगा कर पहुंच गया और जब वो मुस्लिम व्यक्ति ने देखा कि सब किसी ने तिलक नहीं लगाया, एक ने लगाया है, तो उसने कहा कल से यही व्यक्ति तिलक लगा के आएगा और फिर आप में से कोई लगा के आएगा तो उसको निकाल देंगे, इसको अलाउड है। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं कि तिलक लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है। वास्तव में है छोटी एक्टिविटी, लेकिन इससे हम कृष्ण को आकर्षित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कृष्ण को आकर्षित कर सकते हैं। इसको कहते हैं स्मॉल एक्टिविटी बट लाउड कॉल। क्या कहते हैं? स्मॉल एक्टिविटी बट लाउड कॉल। छोटा सा काम है तिलक लगाना, भगवान को प्रणाम करना, क्या बड़ा अचीवमेंट नहीं है? लेकिन कृष्ण इतने ऋणी हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं छोटे से कार्य से। इसलिए भक्ति प्रेम का मतलब होता है कि डिटेल में जाता है व्यक्ति, गो इन डिटेल। तो भगवान से प्रेम है तो हम सारी डिटेल्स में जाते हैं, भगवान के संबंध में, सारी सेवाओं में, इन डिटेल, इन ग्रेट डिटेल। ये प्रेम का एक लक्षण है। तो उसी प्रकार से हमें भगवान के प्रति यदि हमारा प्रेम है नहीं, लेकिन ये एक शो करने का ये है माध्यम है कि हम अपने शरीर को तिलक, तुलसी, हाँ, इनसे सज्जित रखें, जिसके द्वारा कृष्ण हमारी ओर आकृष्ट हो सकते हैं, हमें सेवक के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। तो ऐसे तिरुमली शाही अलवर को तिलक नहीं मिला तो परेशान हो गए। तो भी तब तिरुपति बालाजी उपने उनके स्वप्न में आते हैं और बताते कि तिलक कहाँ मिलेगा आपको। अब सही में ढूंढ रहे हो तिलक अपने जीवन में, तो भगवान आपको क्या करेंगे? तिलक प्रदान करेंगे। तो वैसे ही इनको तिलक मिलता है और धारण करते हैं अपने पूरे शरीर में। आप देखोगे साउथ में अलग अलग, विशेष रूप से बड़ा तिलक नजर आएगा रामानुजा संप्रदाय का, ऐसे ना, बहुत सुंदर, मुझे तो बहुत सुंदर लगते हैं श्री संप्रदाय के भक्त। जब आप श्रीरंगम में जाओगे सब जगह बड़े बड़े तिलक धारण किए हुए वैष्णव, हाँ, सबने तिलक डला हुआ है, धोती पहनी हुई है, रंगनाथ के मंदिर में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं सब लोग, बहुत अच्छा प्यूरिफाइंग वातावरण है। तो एक बार ये जो तिरुमल शाही अलवर है, हाँ, ये अवतार स्थल में गए। अवतार स्थल कौन सा है? तिरुवेक्का। किसका अवतार स्थल है? कौन प्रकट हुए थे? पोइगे अलवर। कौन? हाँ, तो तिरुवेक्का में ये गए और वहां जाकर जब गए तो वहां, क्योंकि पोइगे अलवर का जन्म स्थान है, तो ये जो कन्नी कन्नन थे, कौन थे? कन्नी कन्नन। तो शिष्य नहीं थे अभी क्या बने? फिर ये जब गए तो वहां उन्होंने उनकी शिष्यत्व स्वीकार किया कन्नी कन्नन ने, और यहाँ फिर तिरुमल शाही अलवर निवास करने लगे। तिरुवेक्का कांचीपुरम में आता है, कांचीपुरम के वहां। तो वहां ये निवास करने लगे, इनका एक प्लेस था, स्टेइंग प्लेस या आश्रम आदि था। तो वहां सेवा करने के लिए एक बूढ़ी स्त्री आती थी जिनका नाम था रंगवल्ली। क्या नाम था? हाँ, ये रंगवल्ली नाम आपको श्रीरंगम में याद रखना है, वहां बहुत लीलाएं हैं इस शब्द से। रंगवल्ली, हाँ, कृष्ण से प्रेम बहुत करती थी, रंगनाथ से, लक्ष्मी का ही विस्तार है और लक्ष्मी का भी एक नाम है। भगवान को रंगनाथ कहते और लक्ष्मी का एक नाम है रंगवल्ली या रंगनायकी। क्या कहते? रंगनायकी। तो ऐसे रंगवल्ली ये बूढ़ी औरत थी, ये आकर उनके आश्रम में बहुत सेवा करती थी, झाड़ू लगाना, ये करना, वो करना, हमेशा बिजी रहती थी। तो जब तिरुमली शाही अलवर ने देखा कि ये कितनी सिंसियर है, इतनी सेवा करती रहती है, तो उनको लगा कि इनको कुछ मुझे देना चाहिए। तो उस बूढ़ी माताजी को पूछा कि क्या चाहती हो आप, तो उन्होंने कहा मैं फिर से अपना यौवन वापस चाहती हूँ, मैं युवा बनना चाहती हूँ, युवती, अभी तुम्हें ओल्ड हो गई हो, मैं फिर से जवान सुंदर स्त्री बनना चाहती हूँ। तो तिरुमल शैलवर ने कहा तथास्तु, क्या कहा बोलिए जोर से, हरि बोल। तथास्तु, तथास्तु जैसे बोला तो वो देखते हैं तिरुमल शैलवर के सामने एक नव युवक युवती सौंदर्य से भरी हुई खड़ी हो गई। और फिर राजा को पता चला, वहां के जो पल्लवा किंग्स थे, वैसे चोलहा पांड्या ऐसे बहुत सारे किंग्स थे यहाँ साउथ में, तो ये जो पल्लव राजा थे उन्होंने लगा ये तो बहुत सुंदर स्त्री है, ये मेरी रानी होनी चाहिए, तो उनको उन्होंने स्वीकार किया रानी के रूप में। और ये आशीर्वाद ऐसा था कि वो कभी बूढ़ी नहीं हो सकती, अभी पति राजा उनका पति बना था, तो राजा डे बाय डे क्या होने लगा, बूढ़ा होने लगा। तो राजा ने सोचा अरे ये मैच ठीक नहीं है, मेरी पत्नी युवा होते जा रही है, युवा है और मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। तो उन्होंने एक दिन अपनी पत्नी को पूछा क्या सीक्रेट है आपका, तो उन्होंने कहा ये किसका आशीर्वाद है, किसका आशीर्वाद, हाँ तिरुमल शैलवर का। तो राजा को लगा कि मुझे भी उनके आशीर्वाद चाहिए, या फिर, और ये जो कन्नी कन्नन था ये राजा के वहां जाता था कुछ ना कुछ कार्य के लिए, फिर इनको पता चला कन्नी कन्नन के गुरु हैं तिरुमल शाही, राजा को पता चला। तो राजा ने कहा कन्नी कन्नन कल आपके गुरु जी को बोलो कि आकर मेरी प्रशंसा करे, क्या करे, प्रशंसा करे, मेरी स्तुति करे। तो कन्नी कन्नन ने कहा कि मेरे जो गुरुदेव हैं वो अपने जिह्वा से केवल 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 कृष्ण की प्रशंसा करते हैं, इस जगत के किसी भी व्यक्ति की वो प्रशंसा या स्तुति नहीं करते हैं कृष्ण के अलावा, और वास्तव में कृष्ण के अलावा कोई व्यक्ति प्रशंसनीय नहीं है उनके भक्तों को छोड़कर। और प्रभु भागवत में कहा गया है कि केवल जो पशु के समान व्यक्ति है वो एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, और वो सारी प्रशंसा क्या है, झूठी है, जो इस संसार की संसारिक प्रशंसा है। जैसे शास्त्रों में आता है उष्ट्रा नाम विवाहेशु गर्दभेन प्रतिजायते परस्परम प्रशंसन्ति अहो ध्वनि अहो रूपम। एक बार विवाह था, ये श्लोक सुभाषित है, विवाह था ऊंट का, किसका हुआ था, ऊंट और उनकी सुंदर पत्नी मिस ऊंटनी, तो ये दोनों का विवाह था। तो बेचारे ऊंट को लगा कि अभी लंबे समय के बाद मैं इतना ऊंचा चौड़ा हूँ, मेरा विवाह हो रहा है, तो उन्होंने सोचा इनविटेशन देता हूँ सबको। सबसे पहले याद आई उसको किसी की, तो गधे की याद आई, इसके गधे का मेरे विवाह मंगल कार्य में उपस्थित होना परम आवश्यक है। तो मिस्टर गधे को जब उन्होंने इनविटेशन दिया तो गधा आ गया, सज धज कर आ गया। कैसे आ गया, अब शादियों में देखो लोग कैसे जाते हैं, बहुत सज धज के जाते हैं। तो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम दिखना चाहते हैं, ये नेचर है हमारा ना, इसका मतलब है हम किससे कंपटीशन करना चाहते हैं, कृष्ण से, कृष्णा आप ही सुंदर क्यों हो, मैं भी क्या हूँ, आपसे कुछ कम नहीं हूँ। तो अल्टीमेटली हम राधा कृष्ण से कंपटीशन कर रहे हैं, किससे, राधा कृष्ण से, और भूल गया है कि उनके पास ये 6 ऑपुलेंस है, 6 प्रकार के ऐश्वर्य है। अब ये गधा वा विवाह उसमें पहुंच गया, पहुंचते उसने देखा कि क्या वर खड़े हैं, वर और वधु वहां खड़े हैं, कौन थे, ऊंट। तो वहां वो कहते हैं परस्परम प्रशंसति अहो ध्वनि अहो रूपम। तो चाहते ही उन्होंने प्रशंसा करने लगा, क्यों, क्या आपका सौंदर्य है, क्या आपकी पत्नी का सौंदर्य है, कौन बोल रहा है, गधा। अभी थोड़ी देर में गधे को लगा कि मुझे थोड़ा यहाँ गाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ मेलेडियस वॉइस मेरा दिखाना चाहिए संसार को। तो गधा अपनी सुरीली ध्वनि निकालने लगा, तो फिर ऊंट से रहा नहीं गया, उसने कहा अहो ध्वनि, क्या ध्वनि है। तो भौतिक जगत के जो लोग हैं जो एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं वो ऐसे ही हैं, गधे के समान और ऊंट के समान। वो फालतू में एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं बल्कि प्रशंसनीय नहीं है। तो जैसे कन्नी कन्नन से सुना, किससे सुना, किसने सुना, राजा ने, पल्लवा किंग। राजा को इतना गुस्सा आया, राजा ने कहा मेरे राज्य में रहकर मेरी प्रशंसा नहीं करना चाहता तो क्या करना होगा, आपको मेरे राज्य से निकल जाना होगा परमानेंटली। तो कन्नी कन्नन निकल आए वहां से। कन्नी कन्नन जब निकले तो उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु से भी कहा, कौन थे उनके गुरु, तिरुमल शाही अलवर। मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ तो आपको थोड़े से फैमिली, क्या कहेंगे, फैमिलियरिटी महसूस हो ये सब टर्म से, और वास्तव में बहुत स्वीट है, आपको उच्चारण में अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो ये तिरुमल शाही अलवर को उन्होंने बोला, तिरुमल शाही अलवर ने कहा तो नहीं, हमें तो यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो कन्नी कन्नन और तिरुमल शाही अलवर ने अपना बेड उठा लिया। अभी उनके पास अपना कहने के लिए क्या है, एक चटाई, और उसको ऐसे गोल गोल करके अपने यहाँ डाल के निकल पड़े तिरुमल शाही अलवर, और उनका शिष्य भी अपना जो बेडिंग था छोटा सा उसको पकड़ के निकल पड़े। जाते जाते उनके साथ ही एक टेम्पल था, यथोत्थकारी पेरुमल। कौन सा है, यथोत्थकारी पेरुमल। मैं लास्ट ईयर गया था कांचीपुरम में, तो लास्ट ईयर मैं वहाँ दर्शन करने गया कि ये एग्जैक्टली कैसे है यथोत्थकारी पेरुमल, बहुत सुंदर है, बहुत बड़े हैं। वैसे कांचीपुरम में बहुत सारे टेम्पल्स है, आपको भी अच्छा लगेगा, लेकिन हम देख नहीं पा रहे, एक ही टेम्पल विजिट करेंगे। ये सब टेम्पल जो हम बोल रहे हैं ना, यथोत्थकारी और पोईगे अलवर, ये सब टेम्पल्स वहाँ हैं। तो जब वहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हे यथोत्थकारी पेरुमल, मैं जहाँ जा रहा हूँ और मैं जहाँ रहूँगा तुम्हें भी मेरे साथ क्या करना है, रहना होगा। देखो मैंने मेरी मैट फोल्ड कर ली है, रोल कर लिए हैं, और मैं अभी निकल रहा हूँ। कहा तुम भी अपनी मैट रोल करो और मेरे साथ चलो। किसको कहा उन्होंने, हाँ भगवान को कहा। भगवान, भगवान की मैट कौन सी है, मैट कौन सी है, अनंत शेष, उसके ऊपर लेटे रहते ना। तो भगवान ने देखा, अरे मेरे भक्त जा रहे, मैं यहाँ कहाँ लेटा रहूंगा, यहाँ मैं लेट ना हो जाओ, इसलिए भगवान ने क्या किया, अपना बेड ऐसे रोल करना शुरू कर दिया। किसको रोल किया, अनंत शेष को, और निकल पड़े अपना बेड उठाकर। इसलिए उनका नाम यथोत्थकारी है, यथो तुरंत ही उठ के निकल पड़े। तो पेरुमल मीन्स भगवान विष्णु, तो निकले उनके पीछे। तो भगवान जब निकल पड़ते हैं तो अकेले नहीं, जितने भी देवी देवता वगैरह थे वहां सारे सबने टेम्पल सबको छोड़ दिया और भगवान के पीछे निकल पड़े। और उस राज्य में तुरंत ही अंधकार होने लगा और बहुत बुरा समय प्रकट होने लगा। ये लोग राज्य के बाहर पहुंचते ही कि नहीं, तो ये जो राजा था ये बहुत एक प्रकार से दुखी हो रहा था, उसको पता चला, और ये राजा जाकर क्षमा याचना करता है किनसे, तिरुमल शाही अलवर और भगवान से भी, यथोत्थकारी नारायण, कि आप आ जाइए प्लीज। तो भगवान आते हैं, तब से भगवान को कहते हैं सुन्न वन्नम सेद परिमल। अब ये तो बहुत ही मुश्किल है। तो अब देखेंगे, मैंने सोचा कि कैसे डेटीज दिखते ही है ना, तो भगवान आधे, मतलब जैसे आप उठ ही रहे हो अभी ना सुबह सुबह, वैसे हैं भगवान आधे उठे हुए हैं ऐसे अपने बेड के साथ पीछे, अनंत शेष के साथ, मतलब पूरे उठे भी नहीं और पूरे सोए भी नहीं, ऐसे ही है। तो वो विशेष विग्रह है। तो भगवान तो ये विशेष प्रेम दिखता है किसके साथ, अपने भक्तों के साथ। तो भक्त जहां निकलते हैं वहां भगवान उनको फॉलो करते हैं। इसलिए हमें, इसलिए चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है कि हम भगवान बनने में इंटरेस्टेड नहीं है। हम क्या नहीं बनने में इंटरेस्टेड, हाँ, जैसे प्रभुपाद को कहा कि आप अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना चाहे तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, मैं तो क्या बनना चाहता हूँ, मैं तो जो प्रेसिडेंट है उसका गुरु बनना चाहता हूँ। हाँ, तो उसमें विशेषता है। तो वैसे ही हम भगवान नहीं बनना चाहते, हम तो भक्त बनना चाहते हैं, और भक्त के पीछे भगवान क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, भक्त को फॉलो करते हैं, दौड़ पड़ते हैं। तो इस प्रकार से इसलिए भगवान कृष्ण भी इस कलियुगा में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं और भक्त बनते हैं। तो ऐसे भगवान जब इस प्रकार से उठते हैं तो उनकी बहुत सारी स्तुतियां की जाती हैं, कई सारे सॉन्ग आदि लिखे जाते हैं। तो ऐसे ये जो अलवर है, इनका अभी नया नाम क्या पड़ा था, भक्ति सार, मैंने शुरुआत में बोला था। ये भक्ति सार, ये जो अलवर है, इनका जो निवास स्थली अभी बनाता श्रीरंगम, क्या बनाता, वैसे ये सारी लीलाएं मैंने उन प्लेसेस में सुनानी थी आपको, श्रीरंगम में जाके, लेकिन अभी पहले ही सुना रहा हूँ, फिर वहां जाकर मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा आपको सुनाने के लिए, आपको फिर फ्री छोड़ूंगा दर्शन करने के लिए। तो जब भक्ति सार श्रीरंगम में निवास करने लगे, और उनका निवास स्थल था सात दीवारें, कितने दीवारें, सात दीवारों के अंदर वो निवास करते थे। श्रीरंगम टेम्पल तो वो है, सात दीवारों को क्रॉस करके फिर आप भगवान का दर्शन कर सकते हो, उसको कहते हैं सात प्रकार, मतलब जो वैकुंठ है ओरिजिनल जहाँ भगवान नारायण रहते हैं, तो उनका जो महल या जो भी बना हुआ है वो तो सात दीवारों से है, उनको क्रॉस करके फिर आप भगवान को दर्शन कर सकते हैं। तो ऐसे वहां रहा करते थे भक्ति सार, और इनके नाम से ही पता चलता है इनको भक्ति के अलावा किसी और चीज में सार नजर, बाकी सब क्या है, आसार है। तो ऐसे भक्ति सार वहां रहते थे और बहुत पुराने कपड़े पहनते थे, जो किसी ने फेंके हुए वस्त्र है उनको पहनते थे, और जब तक वो वस्त्र पूरे फट टूट नहीं जाते तब तक उनको फेंकते नहीं थे, और ऐसे किसी के पुराने फेंके हुए वस्त्र को लेते थे, उसको सिलाते थे थोड़ा सा, और फिर उसको धारण करते थे। तो इतना एक प्रकार से पूरी तरह से वैराग्य का जीवन बना बिता रहे थे, और सिलाने के लिए उनकी जो सुई थी, नीडल, वो क्या थी, जो झाड़ू लगाते ना, क्या बड़ा सा ब्रूम होता है ना, लंबा लंबा झाड़ू, क्या कहते हैं उसको, सिक सिक, तो झाड़ू की सिक उनकी नीडल होती थी, उससे वो कपड़े सिलाया करते थे, और वहीं बैठे रहते थे दीवार के पास, रंगनाथ के उन महल या टेंपल के बाहर दीवार के पास। एक दिन शिवजी और पार्वती वहां से गुजर रहे थे, तो शिवजी और पार्वती फ्लाई कर रहे थे, ऊपर से जा रहे थे। तो जब शिवजी पार्वती जाते और उनकी छाया किसी के ऊपर पड़ती है, तो उसकी भौतिक इच्छा बहुत बलशाली होने लगती है, बहुत बलवती हो जाती है। तो ये भक्ति सार जब ये देखा छाया गुजर आ रही है उनकी, तो ये इधर उधर होते थे, यहां जाते थे दौड़ ऐसे इधर उधर ना, ताकि छाया ना पड़े। तो पार्वती ने देखा क्या हो गया, हमारी छाया प्राप्त करने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, और हम स्वयं इसको सब कुछ देना चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन ये हमसे वास्तव में भाग रहा है। तो उन्होंने सोचा कि ये तो अमंगल है। तो पार्वती ने कहा रुको रुको, फ्लाइट को रोको, अभी लैंडिंग की आवश्यकता है, भक्ति सार के पास जाते हैं, ये अपने आपको समझता क्या है। तो ये गए, पार्वती को तो बड़ा गुस्सा आ गया था, अभी उस डायरेक्ट नहीं बोल सकती, वो किसके द्वारा बुलवा रही थी, स्पोक पर्सन होता है ना घर में, कई बार लड़ाई हो जाती है पड़ोसी के साथ, मतलब मैं विलेज में देखा हूँ कई बार, तो कई बार पति अपने पत्नी को आगे करता है कि आप वो स्पोक पर्सन बन जाओ, या कई बार पत्नी क्या करती है अपने पति को, या पति अपने पत्नी को। तो वैसे पार्वती देवी ने इनको उकसाया और इनको कहा कि जाओ उनके पास, ये क्यों यहाँ वहाँ से यहाँ वहाँ भाग रहा है। और शिवजी ने कहा देखो ये किसका डिवोटी है, कृष्ण का डिवोटी है, अरे कोई भौतिक इच्छाएं नहीं चाहता। और फिर ये दोनों जब उनके पास गए, पार्वती देवी ने कहा उसको कुछ ऑफर करो, उसको कुछ दो, स्वर्ग दे दो, बोलो स्वर्ग का राजा बना देते हैं। उन्होंने कहा नहीं चाहिए मुझे। फिर उन्होंने कहा, तो ऐसी कई चीजें उन्होंने ऑफर की भौतिक, लेकिन भक्ति सार ने किसी भी चीज को स्वीकारा नहीं। और भक्ति सार ने कहा कि आप मेरे मृत्यु को डिले कर सकते हो? शिवजी कहते नहीं। उन्होंने कहा मोक्ष दे सकते हो? कहते नहीं। तो फिर क्या कर सकते हो? चुप हो गए शिवजी। उन्होंने कहा तो एक चीज मेरे लिए करो, ये जो मैं अपने कपड़े सिलाता हूँ ना इस झाड़ू के सीख से, वो जो धागा है वो बार बार गिरता है, ऐसा कुछ करो कि वो धागा गिरे ना और मैं अपना बैठ के हमेशा के लिए रंगनाथ के चरणों में बैठ के कपड़े अपने सिलाता रहूं पुराने हाथों से। ये शिवजी को बहुत अपमान लगा। पार्वती ने कहा देखो आपका ये अपमान कर रहा है। किसने कहा? पार्वती देवी ने कहा। तो शिवजी की जो तीसरी आंख है वो अभी खुल गई और वहां से भयानक ज्योति निकल आई। भक्ति सार कोई सर्वसाधारण भक्त नहीं थे, भक्ति सार के पास भी अद्भुत शक्तियां थी। तो भक्ति सार ने अपना अंगूठा दबाया वहां, क्या दबाया? अंगूठा दबाते इतनी पावरफुल एक फायर आग की ज्योत निकल आई कि शिवजी के पीछे वो फ्लेम भागने लगी। जैसे दुर्वासा मुनि के पीछे सुदर्शन लगा था वैसे ही शिवजी के पीछे भागने लगी। और शिवजी रंगनाथ टेम्पल के ऊपर गोल गोल घूम रहे हैं और वो फ्लेम उनके पीछे भाग रही है। और वो शिवजी कहने लगे कि ओ रंगनाथ, मैंने महान अपराध कर लिया है, मुझे क्षमा करो। तो फिर भगवान ने क्या किया, ये भक्ति सार की फ्लेम है, इसको शांत करने के लिए अपने वैकुंठ बादल भेजे। कौन से बादल? यहाँ इस संसार के बादलों से काम नहीं चलेगा, इंद्रा के बादल काम नहीं कर सकते। तो भगवान ने अपने वैकुंठ बादल भेजे और उस फायर को शांत किया और उससे एक सरोवर बना। तो उसी स्थान में वो टेम्पल है। तो वैसे शिवजी ने उनको ये नाम दिया था भक्ति सार। क्या नाम दिया था? भक्ति सार शिवजी ने, कि शिवजी आपके सामने होकर भी दुर्गा देवी के साथ जो सब भौतिक गुण दे सकते हैं, फिर भी उन्होंने कोई भौतिक चीजों को स्वीकारा नहीं भगवान की शुद्ध भक्ति के अलावा। इसलिए हमारी भी यही प्रार्थना होनी चाहिए, शुद्ध भक्ति देवो कृष्ण तुम्हारे चरणे, कि हे कृष्णा आप मुझे आपकी जो शुद्ध भक्ति है प्योर डिवोशनल सर्विस वो आप मुझे प्रदान करो। तो ऐसे तिरुमली शाही अलवर जो भक्ति सार अभी कहलाते थे और भक्ति ही उनका वास्तव में भोजन था, और भक्ति के अलावा कृष्ण के प्रति ये जो भक्ति में सेवा की भावना है इसके अलावा किसी और चीज में इंटरेस्टेड नहीं थे। तो एक बार जब वो वहाँ ऐसे बैठे थे तो एक जादूगर शुक्तिहर, उसका नाम क्या था? शुक्तिहर जादूगर ऊपर से जा रहा था सिंह के ऊपर बैठकर, शेर के ऊपर, और ये अपना नीचे मग्न थे अपनी सिलाई करने में। और जो ऊपर से इसके पास से वो ऊपर से जा रहा था, वो टाइगर ऊपर से जा नहीं पा रहा था उड़के, वो नीचे आ गया, नीचे आकर इनके पास गिर गया। तो शुक्तिहर को लगा कि ये साधु बहुत पावरफुल है, जिसके कारण शुक्तिहर एक सिद्धि प्राप्त व्यक्ति था, जादूगर जिसके पास बहुत सारी अद्भुत सिद्धियां थी, उड़ सकता था, कुछ भौतिक चीजें दे सकता था। तो फिर इस शुक्तिहर जादूगर को लगा कि ये तो बेचारा गरीब है, इसके तो कपड़े ऐसे फटे हुए हैं, या रंगनाथ मंदिर के बाहर दीवार के सहारा लेकर बैठा हुआ है, कपड़े अपने हाथ से सिला रहा है फटे फूटे टूटे। तो उनको लगा इसको कुछ दे देता हूँ। उसकी जो शॉल थी, जो सुवर्ण हीरे मोती से जड़ित ऐसी शॉल थी, उन्होंने निकाले और भक्ति सार के ऊपर फेंक दी। जैसे फेंकी वो शाल, जैसे भक्ति सार के शरीर का स्पर्श हुआ वो बिल्कुल ये बन गई, जैसे कोई पुरानी फटी हुई शाल है, फटी टूटी। ये तो हैरान हो गया। हाँ, इस प्रकार से भक्ति सार कि जो शरण है वो स्वीकार करता है, वो शाल इतनी ये थी कि जो जिसमें कई सारे छेद हो गए और पुरानी हो गई, और फिर भक्ति सार ने अपने पुराने कपड़े ऐसे उनके ऊपर फेंके, जैसे फेंके तो वो किस चीज में कन्वर्ट हो गए, बिल्कुल ज्वेल से रत्न जड़ित ऐसे कपड़े हो गए। इस प्रकार से तिरुमल शाही अलवर जो भक्ति सार है, और वास्तव में भक्ति ही इस जीवन में सार है, इसलिए भक्ति और ठाकुर कहते हैं नाम बिना किछु नाहिक आर चौदह भुवन माझे, कि इस संसार में हरि नाम के बिना कोई लेने योग्य वस्तु नहीं है। इस संसार में चाहे जितनी भी बाकी वस्तुएं हम इकट्ठा करते हैं, उन सारी वस्तुओं को हमें नोइंगली जानकर छोड़ना पड़ेगा इस संसार में, चाहे हम छोड़ने के लिए तैयार हो या ना हो, फोर्सफुली हमें इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा, ये हमारी स्थिति है। तो लेकिन यहाँ भक्ति सार से हम ये सीख सकते हैं ऐसे महान आचार्य के जीवन से कि किस प्रकार से उन्होंने जो भगवत भक्ति के अलावा किसी और चीज को उन्होंने अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं शुद्ध भक्ति क्या है, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तः तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति क्या है कि अपने इंद्रियों के माध्यम से इंद्रियों के जो स्वामी कृष्ण हैं उनकी सेवा करना, अन्याभिलाषितः शून्यम। तो इस प्रकार से ये तिरुमल शाही अलवर थे। नेक्स्ट अलवर कौन है? नेक्स्ट अलवर नम अलवर। और ये तिरुमल शाही अलवर की एक विशेषता थी कि ये जहाँ भी जाते थे तो डेटीज हमेशा उनकी तरफ ही देखती थी, चाहे जहाँ भी खड़े हो जाए, जहाँ भी खड़े हो जाए ये भक्ति सार भगवान हमेशा उनकी तरफ देखा करते थे। इस प्रकार से ये अलवर थे। तो नेक्स्ट अलवर है नम अलवर। कौन से अलवर? तो हम आगे बढ़े या ब्रेक दे प्रसादम के लिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे
राम 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 हरे। जोर से
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
तिरुमल शाही अलवर के भक्ति सार के श्रील प्रभुपाद के निताय गौर प्रेमानंदे। तभी हमारे कितने अलवर बचे हैं? कौन कौन से बचे हैं? कौन से बचे हैं नाम बताइए फटाफट। नम्मा अलवर, मधुर कवि अलवर, तोंडरादी पोड़ी, तिरुपन अलवर और तिरुमंगई अलवर। तो ये सारे अलवरों का जो लाइफ है बहुत पावरफुल है और इंस्पायरिंग है और मधुर है सुनने के लिए। आपको अलवरों का अच्छा लग रहा है सुनना?
बहुत अच्छा लग रहा है।
तो कठिन तो नहीं है ये सारे नाम? है लेकिन बहुत बहुत अच्छा है। ये अलवरों से अलवराज बहुत क्लोज थे भगवान के। साउथ में जितने भी डेटीज हैं उनके सबसे क्लोज ये अलवराज थे। तो इनके बारे में सुनेंगे हम तो फिर वो मंदिरों में जाओ सब जगह लिखा होता है अलवर अलवर अलवर। मुझे तो पहली बार गए समझ में नहीं आता था क्या है अलवर। तो फिर थोड़ा सा पढ़ने का और जानने का मौका मिला तो पता चला कि कितना इम्पोर्टेंट है अलवरों को बारे में सुनना। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हम बाद में सुनेंगे, आज चाहे तो प्रसादम के बाद तो आप थके होंगे, या तो कल या फिर आज। हरे कृष्णा। तो गरम गरम सूरत से आया हुआ प्रसाद आपका वेट कर रहा है। सर्विंग टीम है हाँ बताइए।